ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता की है। बातचीत के दौरान श्री मोदी ने भारत का ये रुख दोहराया कि रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्वक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत मानवीय प्रयासों को प्राथमिकता देकर क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता फिर से स्थापित होने का समर्थन करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत इस दिशा में सभी संभव सहयोग देने को तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक और बेहद अहम हैं।
मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे।
राष्ट्रपति पुतिन ने श्री मोदी का रूस में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 2 दिन की यात्रा पर आज रूस पहुंचे हैं। सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। ये पुरस्कार 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को दिए गए। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, जल उपयोगकर्ता संघ और नागरिक समुदाय शामिल हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के 78% से अधिक ग्रामीण घरों में नल से नल के कनेक्शन दिए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2019 में जब इस मिशन की शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 17% ग्रामीण घरों में स्वच्छ जल की उपलब्धता थी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के द्वारा 4G नेटवर्क की शुरुआत के बाद से ग्राहकों की संख्या पिछले 6 महीनों में 75 लाख से बढ़कर 1,80,00,000 हो गई है। आज नई दिल्ली में BSNL के नए लोगो और 7 नई सेवाओं का उद्घाटन करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि भारत विश्व के उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अपना 4G नेटवर्क विकसित किया है और जल्दी ही इसे 5G नेटवर्क में बदला जाए। वक्फ संशोधन विधेयक 2023 पर संसद की संयुक्त समिति ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को समिति की बैठक में भाग लेने से 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। ये निर्णय आज संसद भवन में समिति की बैठक के दौरान उनके अभद्र व्यवहार के बाद लिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि बैठक के दौरान श्री बैनर्जी की भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ बहस हुई, जिसके बाद वे अमर्यादित आचरण पर उतर आए। झारखंड में विधानसभा चुनाव के 2रे चरण की और महाराष्ट्र में 1 चरण में होने वाले चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई है। नामांकन पत्र 29 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को होगी। झारखंड में इस चरण में 38 सीटों पर और महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर 20 नवम्बर को मतदान होगा। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवम्बर को होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संभागीय प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों पर घाटी छोड़ने के लिए दबाव डालने की अफवाहों का खंडन करते हुए उन्हें आधारहीन और असत्य बताया है। प्रशासन ने बताया है कि उसने घाटी में दूसरे राज्यों के श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 930 अंक की कमजोरी के साथ 80,221 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 309 अंक के नुकसान के साथ 24,472 पर रहा। बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवात दाना ओडिशा के तट की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके बृहस्पतिवार और शुक्रवार की रात टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवात के कारण ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। चक्रवात बालासोर के पास ओडिशा तट और केंद्रपाड़ा में भद्रक या भीतरकनिका से टकराने की आशंका है। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का सामना आज शाम 6:05 पर मेजबान मलेशिया से होगा। इससे पहले भारत ने पहले मैच में जापान को 4-2 से और ब्रिटेन को 6-4 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।